ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए कहा है कि भारत को अपनी विरासत पर गर्व है और देश नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि किस तरह करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पवित्र संगम पर एकत्र हुए। उन्हें कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था, इसके बावजूद करोड़ों श्रद्धालु स्वेच्छा से महाकुंभ आए और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ये आधुनिक प्रबंधन पेशेवरों और नीति विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 16,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गई। प्रयागराज जंक्शन पर संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज से लगभग 4,50,00,000 लोगों ने ट्रेनों के माध्यम से यात्रा की। श्री वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ के लिए 21 से अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए। उन्होंने कहा कि इस महाआयोजन में सभी विभागों का पूरा सहयोग रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रयागराज में दिव्य और डिजिटल महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ संपन्न हो गया। 45 दिन के इस विराट आध्यात्मिक आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी को अपनाने और इसके उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने भाषा को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बांधने वाला सूत्र बताया। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया। श्री सिंह ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में रक्षा मंत्रालय की राजभाषा विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की। पत्रिका में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर कविताओं के साथ सरकार की नीतियों पर मंत्रालय के कर्मियों के लेख शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन लेयान से भेंट की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे यूरोप के साथ भारत के संबंधों को फिर सक्रिय करने के विचारों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारतीय मंत्रियों और यूरोपीय संघ के आयुक्तों के समूह की व्यापक भागीदारी भारत और यूरोपीय संघ के प्रगाढ़ संबंधों को दिए गए महत्व का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। यूरोपीय संघ के आयुक्तों के समूह की भारत की पहली यात्रा पर आई है। दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार की आबकारी नीति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी रिपोर्ट की जांच करेगी। रिपोर्ट में वर्ष 2021 में लागू की गई आबकारी नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व के नुकसान का पता चला है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों के दोषियों के विरुद्ध जांच और कार्रवाई की मांग के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ये घोषणा की। श्री गुप्ता ने कहा कि समिति 3 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। अध्यक्ष ने विधानसभा सचिव को सीएजी रिपोर्ट दिल्ली आबकारी विभाग को भेजने और 1 महीने में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। इस बीच भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को आज विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विशेष रूप से भारतीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए नई गोल्ड कार्ड पहल शुरू की है। इसमें हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों के स्नातकों सहित विदेशी नागरिकों को $50,00,000 शुल्क के बदले अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति मिलेगी। ट्रंप की ये योजना अमीर विदेशियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने के लिए है। रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच रद्द हो गया है। बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका और दोनों टीमों में अंक बांटे गए हैं। दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी हैं। इधर बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से गुजरात जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।